लूक चैप्टर 6 वर्सेस 46 टू 49। एंड पिछले सप्ताह अगर आप यहाँ पे थे तो आपको स्मरण होगा, हम लोग ने एक नई सीरीज आरंभ शुरू किए हैं, एक श्रृंखला संदेशों की जो कि पैराबल्स पर है, दृष्टांतों पर है। हम लोग दृष्टांतों के विषय में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं लूका से। लूका से पिछली बार हम लोग ने जो पैबंद है, नया पैबंद, पुराने कवर पे नया पैबंद और नई दाखरस, पुरानी मशकों में नई दाखरस के बारे में बात किया था हम लोग ने, राइट। हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था, हमने देखा था कि आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, हमने बात किया था सब कुछ बदलना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा, प्रभु के पीछे संपूर्ण समर्पण से आना पड़ेगा, ना आधे अधूरे फिरदे से नहीं, एक समझौते के जीवन के साथ नहीं। ये पिछली बार हम लोग ने उस दृष्टांत से सीखा था, द पैराबल। कौन सा पैराबल था पिछली बार, जो पैबंद का एंड दाखरस एंड मशकों का। ऑलराइट, आज की सुबह फॉर अस टुडे दिस मॉर्निंग लूक चैप्टर 6 वर्सेस 46 टू 49, लूकस छठा अध्याय उसका 46 पद से लेकर 49 पद तक। ऑलराइट, तो आज की मुख्य बात, एक मोटी मोटी बात, मोटी मोटी बात, द बिग थिंग, द बिग आइडिया आज के खंड से, अगर हम इस पैराबल को, इस दृष्टांत को सारांशित करें, समराइज करें, तो यहाँ पे एक बात हमसे कही जा रही है, वो ये कही जा रही है, यीशु को केवल शब्दों में नहीं किंतु कार्यों में भी प्रभु जानो। यीशु को केवल शब्दों में ही नहीं किंतु कार्यों में भी प्रभु जानो। क्यों? अनंत सुरक्षा के लिए, अनंत सुरक्षा के लिए, ठीक है। अनंत सुरक्षा हेतु यीशु को केवल शब्दों में नहीं किंतु कार्यों में भी प्रभु जानो। सो इन इंग्लिश, एक्नॉलेज जीसस एज लॉर्ड, नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन डीड्स टू, फॉर इटर्नल सिक्योरिटी। एक्नॉलेज जीसस एज लॉर्ड, नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन डीड्स टू, फॉर इटर्नल सिक्योरिटी। अनंत सुरक्षा हेतु यीशु को केवल शब्द में नहीं किंतु कार्यों में भी प्रभु जानो या मानो या दिखाओ। राइट, हमने फिर से जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, केवल संदर्भ को स्पष्ट कर देने के लिए, केवल संदर्भ को और हमारे सामने क्लियर कर देने के लिए। रिमेंबर, याद रखिए लूका में क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने पिछली बार हम लोगों ने देखा 5वें अध्याय में उपवास का प्रश्न चल रहा है। जब उपवास का प्रश्न चल रहा है तो वो केवल एक स्मोक स्क्रीन है, केवल एक डिस्ट्रैक्शन है, वो रियल इश्यू नहीं है, वो मुख्य बात नहीं है। जो वहाँ पे उस समय फरीसी लोग हैं यीशु मसीह के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, उनसे उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनकी बातों में फंसते नहीं है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, ऐसा है, तुम मुझको पुरानी यहूदी धर्म से जोड़ने की कोशिश मत करो, मुझे ऐड ऑन मत करो, मुझे जोड़ मत लो केवल, ऑलराइट। मुझे खाली जो तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो हमारा तुम्हारे अस्तित्व में जो काम चल रहा है, जो धर्म चल रहा है, तुम्हें सोचने का तरीका है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनमें मुझे केवल जोड़ मत लो, मैं सब कुछ नया बनाता हूँ, मैं सब कुछ नया करता हूँ, मैं नई वाचा के अंतर्गत तुमको नया होना पड़ेगा, नई रीति से मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, नई रीति से समर्पण करना पड़ेगा, नई रीति से मेरे पीछे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है यीशु मसीह 6वें अध्याय में उसके 5वें पद में, वो तो सबत का प्रभु है। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह केवल एक नया गुरु नहीं है, यीशु मसीह खाली एक और फरीसी नहीं है, यीशु मसीह एक और कोई नया शिक्षक नहीं है, यीशु मसीह कई रास्तों में से एक रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो वो स्वयं सबत का प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ सबत। मतलब क्या हुआ? मतलब वो स्वयं याहवे है, स्वयं यहोवा है, स्वयं परमेश्वर जो देह में आ गया है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। तो अगर वो प्रभु है तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? तो हमारा प्रत्युत्तर ये होना चाहिए, अगर वो कह रहे मैं सब कुछ को नया बनाता हूं, तो जो वो नया दे रहा है, नए जीवन की मांग कर रहा है, उसके अनुसार हमें उसका अनुसरण करना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा, जैसा वो कह रहा है हमें करना पड़ेगा। यही बात हो रही है 6वें अध्याय में, ये जो संदर्भ चल रहा है। तो अगर आप 6वें अध्याय को आप ध्यान से देखेंगे वहां पे, तो बेसिकली यीशु मसीह 12 पद से आगे शिष्यों को नाम देते हैं, उनको लोगों बुलाकर उनको शिष्य बनाते हैं। यहाँ पे लूका उसका 6वां अध्याय में उन्होंने यीशु मसीह प्रार्थना करें 12 पद में, 13 पद में उन्होंने जो अपने शिष्य उनको बुलाया और उन्हें प्रेरित बोला, कहा ये मेरे प्रेरित हैं, ये द्वारा मेरे निर्धारित विशेष शिष्य हैं। 14 और 15 पद में वो बताते हैं उनका नाम क्या है, 14 से 16 पद में। एंड देन वर्स 17 में वो नीचे उतर आते हैं, पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं। जस्ट वेरी साइड नोट, एक बात ध्यान देने के लिए, अब अगर आप लोग याद होगा सर्मन ऑन द माउंट पहाड़ी उपदेश, मत्ती में पहाड़ी उपदेश है, लूका में समतल पे उद्देश्य है, ठीक है। मैथ्यू इट्स अ सर्मन ऑन द माउंट, मत्ती में सर्मन ऑन द माउंट है, लूका में मैदानी उपदेश है, पहाड़ी उपदेश मैदानी उपदेश। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं लूका और मरकुस मत्ती क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग दृष्टिकोण से लिख रहे हैं और ये अलग अलग घटना के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह एक ही बात को अनेक, तो कई बातें जो पहाड़ी उपदेश में वही बातें यहाँ पे मैदानी उपदेश में रिपीट हो रही हैं। क्यों रिपीट हो रही हैं? क्योंकि यीशु मसीह एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, अलग अलग तरीके से दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा शिक्षक होगा वो एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से वही बात को बताए, कोई नई गूढ़ ज्ञान की बात लेकर के नहीं आ रहे यीशु मसीह, लेकिन जो सत्य है, जो वचन की समझ है, उसको संपूर्णता से लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। तो 6 अध्याय में यीशु मसीह पहले बताते हैं कि वो सबत के प्रभु हैं, 6 अध्याय उसके 5 पद में। 12 से 16 में यीशु मसीह शिष्यों को प्रेरित करके ठहराते हैं। वह 17 में वो नीचे उतर के समतल पे, बराबरी पे, मैदान में आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं 17 पद के अंत में उसका उसका संदेश सुनने के लिए। वहाँ पे यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, लोग अंदर से दुष्टात्माओं को निकालते हैं। एंड वर्स 20 ऑनवर्ड्स, 20 पद से लेके 23 पद में, 6 अध्याय के 20 पद से 23 पद में, अगेन द कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है देखना संदर्भ को। 20 पद से 23 पद में यीशु मसीह 4 धन्यवाणियां बोलते हैं। मत्ती में 8 धन्यवाणियां हैं, यहाँ पे 4 धन्यवाणियां हैं। 4 धन्यवाणियां बोलने के बाद 24 पद से 26 पद में यीशु मसीह 4 हाय बोलते हैं, हाय तुम पर, वो अनटू यू, हाय तुम पर यीशु मसीह। अगर आप देखेंगे आपके बाइबल में 20 से 23 एंड देन 24 से 26 एंड देन वर्सेस 27 to 36, सो ही हैज नोटिस अगेन यीशु मसीह प्रभु हैं। उससे पहले यीशु मसीह सब नया लेकर के आ रहे हैं, ठीक, यीशु मसीह सब नया लेकर के हैं, नई दाखरस है, नई मशके, नई दाखरस मतलब नया, पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, वेरी सिंपली पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, पुराना धर्म नहीं चलेगा, पुरानी रीति रिवाज नहीं चलेगी, पुरानी परंपरा नहीं चलेगी, दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। एंड यीशु मसीह कह रहे हैं मुझको पूरी तरह से अपनाओ, खाली जोड़ मत लो, खाली एडिशन मत कर लो, खाली एक चिप्पी मत लगा लो। क्यों? क्योंकि मैं सबत का प्रभु हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। क्यों? तो जो मैं कह रहा हूं उसको गंभीरता से लो, और फिर मैं तुमको बताता हूं अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे अनुसार चलोगे तो तुम धन्य होगे, मेरे विरोध में चलोगे तो हाय तुम पर होगी। टू थिंग्स, मेरे पीछे चलोगे, मेरे अनुसार चलोगे तो तुम धन्य होगे, तुम खुश होगे, ब्लेसेड मकारियोस, खुश होगे, हैप्पी, हैप्पी इज द मैन, खुश है वो आदमी, प्रसन्न है वो आदमी, वास्तव में आशीषित है वो आदमी जो मेरे अनुसार चलेगा। जो मेरे अनुसार नहीं चलेगा, हाय उस पर, हाय उस पर, नाश होगा उसका। एंड देन वर्सेस 27 ऑल द वे टू वर्स 42, 27 से लेके 42 तक की, 27 से लेके 42 पद में बेसिकली यीशु मसीह बता रहे हैं उनको, शिष्यों को करना क्या है। अगर वो प्रभु हैं, शिष्य बना रहे हैं, प्रेरित बना के भेज रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं समतल पर, मैदान में, मांग क्या कर रहे हैं अपने लोगों से, कहना क्या मांग रहे हैं अपने लोगों से, चाहते क्या अपने लोगों से। 27 पद से लेकर 36 पद ने अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, 27 पद लेकर 36 पद में। एंड देन वर्सेस 37 से लेकर के 42 पद में एक दूसरे के ऊपर फालतू में निंदा करने के उद्देश्य से, नीचा दिखाने के उद्देश्य से, लोगों से बदला लेने के उद्देश्य से दोष मत लगाओ, नीचे मत गिराओ लोगों को, नीचा मत दिखाओ। कहां पे? वर्सेस 37 ऑल द वे टू वर्स 42, 37 से लेकर 42 पद में। सो देन प्रेम करो, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्रभु, मैं तुमको बुला रहा हूं, तुम मेरे शिष्य हो, मैं उपदेश दे रहा हूं, धन्य हो तुम अगर मेरे अनुसार करोगे, हाय तुम पे अगर तुम मेरे विरोध में जाओगे। तो करो क्या? प्रेम करो अपने शत्रुओं से। एंड 37 पद से लेकर 42 पद तक दोष ना लगाओ, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो फालतू में, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, पुरानी बातों को दिल में मत रखो। दैट्स व्हाट बेसिकली जीसस सेइंग इन ऑल दिस पैसेज, इस खंड में यीशु मसीह कह रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन वर्सेस 43 43% से लेकर 45%, व्हाट इज 43 to 45, 43-45 में यीशु मसीह कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है जो तुम्हारे दिल में होगा वही निकल कर गया है बाहर। अगर तुम्हारा दिल खराब है तो तुम्हारे काम खराब होंगे, अगर जड़ खराब होगी तो फल खराब होगा। किसी भी किसान से पूछ लिया, बीज खराब होगा तो पेड़ तो खराब होगा ही होगा। क्यों तुम प्रेम नहीं करते हो एक दूसरे से, क्यों तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हो, क्यों तुम दया नहीं दिखाते हो, क्यों तुम पुरानी बात को भूलना नहीं पाते हो, क्यों तुम बदला लेते हो, क्यों तुम नीचा दिखाते हो, क्यों तुम सह नहीं लेते हो, क्यों तुम करुणा नहीं दिखाते हो किसी को, क्योंकि अंदर गड़बड़ी है। जिसी दैट्स व्हाट यीशु मसीह यहां पे बता रहे हैं। कहां पे बता रहे हैं? 43 पद से लेकर 45 पद में। एंड देन फिर यीशु मसीह वहां से ट्रांजिशन करते हैं, वहां से आगे फिरते हैं 46 पद से लेकर 49 पद में। एंड फिर वो बताते हैं कैसे मालूम तुम अंदर सड़े नहीं हो, कैसे मालूम तुम्हारा हृदय खराब नहीं है, कैसे मालूम तुम्हारा बीज खराब नहीं है, कैसे मालूम कि तुम सही हो, तुम ठीक हो, तुम मेरे लोग होने के लायक हो, कैसे मालूम कि तुम सच में धन्य होगे, तुम पर हाय नहीं होगी। आ कैसे मालूम? 46 पद से लेकर 49 पद में कैसे मालूम होगा? यीशु मसीह को प्रभु जानो। कैसे? केवल शब्दों में नहीं, केवल शब्दों में नहीं, लेकिन कैसे? कार्यों में। क्यों? तभी तो अनंत सुरक्षा मिलेगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेरेबली इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम बार बार आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग हमारे कलीसिया में कुछ समय से आ रहे हैं तो आप जान रहे हैं नामधारी मसीहत कैंसर है। मसीह समाज में नामधारी मसीहत कैंसर है। नाम के ईसाई, नामधारी नया जन्म पाए हुए विश्वासी, फोर्थ ग्रेड जो नहीं होता, लाइक सबसे खराब श्रेणी के कैंसर है। जो तो हम लोग कह रहे नामधारी साथ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास करता है, हम वचन का पालन करने वाले लोग हैं, हम लोग शिक्षा के अनुसार चलना मांगते हैं, वे लोग जो कहते तो हैं कि हम नया जन्म पाए हुए हैं, जो दावा तो करते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, और मुंह से तो कहते हैं कि वो विश्वासी हैं, तो नामधारी नया जन्म पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग वो तो और भी अधिक बदतर हालत में है। यही बात यीशु मसीह यहां पे कहना मांग रहे हैं। तो लुक विद मी इन वर्स 46 यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब आज्ञाकारिता नहीं होती है तो यीशु की प्रभुत्व को तिरस्कारा जाता है। वर्स 46, अनाज्ञाकारिकता, कहना ना मांगना, डिसोबीडियंस, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभुता को निकालना। वर्स 46 देखिए, जो मैं कहता हूं यू नोटिस, जो मैं कह रहा हूं, क्या कहा मैंने तुमसे? शत्रु से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, बदला मत लो, पलट करके लोगों से हिसाब मत रखो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, भलाई करो, सह लो, बुराई के बदले बुराई मत करो, केवल फायदे के लिए संबंध मत बनाओ। लोगों से अच्छा संबंध सिर्फ इसलिए नहीं बनाओ ताकि वो भी हमारे साथ अच्छा संबंध करेंगे, अगर लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करें फिर भी तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर यीशु मसीह कह रहे हैं किसी पर दोष मत लगाओ, किसी पे गलत उद्देश्य से मनसा से नीचा गिराने के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार मत करो। नोटिस करिए वर्स 37 में, किसी पर दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब दोष ना लगाओ का मतलब ये नहीं है कि तुम सही गलत के बीच में भेद करना छोड़ दो, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस, लेकिन इसका ये मतलब है कि फालतू में बिना मतलब बदले की भावना से नीचा दिखाने के उद्देश्य से जजमेंटलिज्म को रिजेक्ट करो, तिरस्कारो, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। एंड इंटरेस्टिंगली, ऑल्दो ये मुख्य बात नहीं है लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए आप लोगों के लिए, वर्स 38, वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड वर्सेस इन द न्यू टेस्टमेंट, वर्स 38 पढ़ा है आप लोगों ने कभी, सुना इसके ऊपर प्रचार? सो ऑफन अक्सर लोग इस पद को इस्तेमाल करते देने के लिए। तो यहाँ पे जो इमेजरी है, चित्रण है, वो है जब अनाज लेने जाते तो अनाज लेने का कनस्तर होता है, उसको भर करके दिया जाता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज द की, संदर्भ ही कुंजी है, सफलता की कुंजी, बाइबल इंटरप्रिटेशन की कुंजी। क्या है यहाँ पे बात? किसकी चल रही? दोष मत लगाओ। अगर तुम दोष नहीं लगाओगे तो तुम्हारे पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाओगे तो पलट के तुम्हारे पर भी दोष लगाएं, लेकिन अगर तुम अनुग्रह दिखाओगे, दया दिखाओगे, क्षमा दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे, माफ कर दोगे, पुरानी बातें भूल जाओगे, संबंधों को बनाने की कोशिश करोगे, संवारने की कोशिश करोगे, संजोने की कोशिश करोगे, तो उतना ही अधिक तुम्हारे साथ लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये बात हो रही है यहां पर, इट्स नॉट अबाउट गिविंग। वापस आते वर्स 46 में, यीशु मसीह कहते जो मैं तुमसे कहता हूं, जो मैं तुमसे, मैं क्या कहता हूं तुमसे, प्रेम करो, दोष मत लगाओ, बुराई मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में आप बार बार देखेंगे, नया नियम हमको बार बार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत जोर दे रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हो गया, अंतर व्यक्तिगत संबंधों के लिए बहुत जोर देता है, एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने बार बार कहा नए नियम में ये फ्रेज, ये वाक्यांश एक दूसरे बार बार था, लगभग 40 बार से ज्यादा बार आए नए नियम में, एक दूसरे के साथ। हम लोग मसीह लोग इसी में गिर जाते। मेरी आशा ये है कि आप लोग, ज्यादातर जो लोग आज की सुबह यहां पे बैठे हुए हैं, आई होप कल रात में आप में से कोई नकाब डाल करके बाइक से जाकर के लोगों से कट्टा दिखा करके पैसे नहीं वसूल रहा था सड़क पे। आई होप आप में से कोई ड्रग्स नहीं बेच रहा था कल रात में। आई होप किसी ने बैंक में डाका डाल करके आज सुबह यहां के बैठे हुए नहीं आप, मेरी आशा है ये। आई होप किसी ने मर्डर नहीं किया है। आई होप आप लोग, तो जहां तक हमको पता चलता है मसीह लोग अक्सर ये जो दिखने में बड़े जो जघन्य अपराध हैं उनसे बच जाते हैं। हो सकता है अपने पति के प्रति वफादार हैं, अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, आप गाली नहीं दे रहे हैं, आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं लोगों से। इन क्षेत्रों में हम में से कई लोग अनेकों बार अक्सर विजय होने में सफल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम तो ठीक हैं, वी फाइन, हम ठीक हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं देखो वो तो सब ठीक है, वो तो तुमको नहीं करना, वो तो तुमको मालूम ही नहीं करना चाहिए। तुमको हत्या नहीं करना है, तुमको चोरी नहीं करनी है, तुमको डकैती नहीं करना है, तुमको व्यभिचार नहीं करना है, तुमको लड़ाई नहीं करना है, तुमको चोरी नहीं करना है, ये तो तुमको मालूम ही मालूम है। लेकिन मैं तुमसे अब क्या कह रहा हूं, वो तो है ही है, उससे बढ़कर मैं तुमसे तुम्हारा अंतर व्यक्तिगत संबंधों में तुमको मेहनत करनी, एक दूसरे के साथ, पति को पत्नी के साथ, माता पिता को बच्चों को, बच्चों को माता के साथ, कलीसिया में ये जो कवनेंट कम्युनिटी है, ये जो वाचा का जो समुदाय है जिनको यीशु मसीह ने अपना बनाया है, वो जो सबत का प्रभु जिनको बुला रहा अपने राज में, उनको राज में कैसे जीना है, प्रभु के लोग कैसे एक दूसरे के साथ संबंध ठीक होना है, आत्मीयता, अंतरंगता का, निकटता का। टेल मी दिस, ईमानदार से बताइए, इजंट दिस द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? क्या ये आपके लिए और हमारे लिए मुश्किल बात है कि नहीं है? ये हमारे लिए आपके लिए मुश्किल, अगर आपके लिए नहीं मुश्किल है तो यीशु मसीह जय मसीह की। इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी ने मुझसे बोल दिया, किसी ने मुझसे ज्यादा बोला, किसी ने मुझसे कम बोला, किसी ने ज्यादा मुस्कुरा के बोला, कम मुस्कुरा के बोला, किसी ने जय मसीह बोला, किसी ने रूखे भाव में जय मसीह बोला, किसी ने धीरे से जय मसीह बोला, किसी ने कुछ ज्यादा ही जय मसीह बोला, कुछ टॉन्ट मार रहा था, हमको कटाक्ष कर रहा था। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, छोटी छोटी बातों को प्रभु जी हमसे क्या करें, क्षमा करो एक दूसरे को, प्रेम करो, माफ करो, सह लो, तुम्हारे साथ बुरा होता है होने दो, बढ़ चढ़ करके मदद करो, बढ़ चढ़ के, डू यू सी दैट, बढ़ चढ़ करके, थोड़ा नहीं, बढ़ चढ़ करके, नाम के लिए नहीं, केवल नाम के वास्ते नहीं, मसीहत नाम के वास्ते नहीं, केवल इसलिए नहीं, बोल सॉरी बोल तो दिया भैया, कितनी बार बोलेंगे सॉरी, माफ कर तो दिया भैया, खाने पे बुला तो लिया, बात कर तो लिया, हॉस्पिटैलिटी कर तो लिया, केवल ऊपर ऊपर नाम के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में अंदर, क्योंकि जो अंदर है वो निकल करके आएगा। जैसा बीज होगा वैसा पेड़ होगा और वैसे ही फल होंगे। जी सी दैट्स व्हाई वर्स 46 यीशु मसीह कहते हैं मैं जो तुमसे कहता हूं, ये सब करने के, प्रेम करने के, क्षमा करने के लिए, दोष ना लगाने के लिए, एक दूसरे को नीचा ना दिखाने के लिए, बदला ना लेने के लिए, जब मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे नहीं मानते, यू डू नॉट बिलीव दैट, यू डू नॉट ओबे दैट, तुम उसको सुनते नहीं, उसके अनुसार करते नहीं, तो फिर हे प्रभु क्यों कहते हो? अगर आपकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी लोग जानते हैं, पत्नी अपने पति से कहीं, आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन आप मदद नहीं करते हैं, काम नहीं करते, दिखाते नहीं अपने कार्यों से कि आप हमको प्यार करते हैं, जो निशान, इट्स वेरी कॉमन, हम जानते हैं, मम्मी पापा बोलेंगे, मम्मी पापा बच्चों से बोलेंगे, तुम बोलते हो कि तुम प्यार करते हो हमसे, तुम्हारी इज्जत करते हो, लेकिन तुम्हारे कार्यों से नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी इज्जत करते हो। सेम प्रिंसिपल, वही सिद्धांत है, दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे प्रभु। अभी क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग संडे के दिन सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे? गानों में हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। आई मीन यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। एक के बाद एक, यू थिंक अबाउट द वर्ड्स जो हम बोलते हैं अपने शब्दों से। हम बोलते रहे प्रभु प्रभु, बट जब करने की बात आती है यीशु मसीह क्या करें, तो यीशु मसीह जीसस इज नॉट इंप्रेस। यीशु मसीह हमसे आपसे इस बात से प्रभावित नहीं होते कि हम कितना बोलते हैं प्रभु। जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो संसार के लोग हैं, वो मालूम अपने ईश्वरों को या अपने देवताओं को, अपने भगवान को, प्रभु को, जो भी है उनका गुरु है, उनको कैसे प्रसन्न करते हैं, कैसे इंप्रेस करते हैं। यू नो हाउ हाउ कैसे कैसे इंप्रेस करते हैं? ज्यादा बार बोले प्रभु 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 प्रभु। What Jesus is saying, मत बोलो हे प्रभु तुमसे दान। तो मुंह से बोलने से क्या होता है? प्रभु प्रभु प्रभु, आई मीन एनीथिंग, सम्मान करके प्रभु, गिर पड़े ओ प्रभु, कुछ भी होगा। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, लंबे लंबे गाने, हाथ उठा कर जो भी करना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दिखाने के लिए यीशु मसीह कहे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ये फरीसी लोग, मैं तुमसे प्रभावित नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वर्स 46, लेकिन काम नहीं करते हो। एंड देन वर्स 47 से लेकर 49 में ही गिव्स अस अ पैराबल। यहाँ पे हमको एक दृष्टांत देता है, यहाँ पे एक दृष्टांत देता है, किसका? एक घर बनाने वाले का। दो तरह के घर बनाने वाले हैं, दो तरह के घर हैं। वर्स 47 से 48 में एक घर है, वर्स 49 में एक दूसरा घर है। एंड इसी तरह का दृष्टांत मत्ती में पाया जाता है। यीशु मसीह ने मत्ती में भी यही बात कही है। वहाँ पे यीशु मसीह बात करते हैं एक बुद्धिमान के बारे में और एक निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में, मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो 47 में बेसिकली जो व्यक्ति है, अगर आप मत्ती को भी देखेंगे तो वो व्यक्ति वो मूर्ख है। मुंह से तो बोलता है प्रभु है, सेज मैं मसीही हूं, लेकिन जब आती है काम करने की, कीमत चुकाने की, तो क्या हो जाता है? वो रफू चक्कर हो जाता है। 9:2-11, जिम्मेदारी नहीं उठाना मांगता है। अभी हम लोग ये गीत गाए थे ना कि हे प्रभु आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। हे प्रभु, हमने अपने क्रूस को कब ले लिया है? जिस दिन हम यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया, उस दिन से हम अपने क्रूस को उठा के चल रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे जिस दिन हमने चलना शुरू किया, ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। चाहोगे तो वो तुम्हारा प्रभु होगा, नहीं चाहोगे तो तुम्हारा प्रभु नहीं होगा। तो सम पीपल थिंक, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मसीह लोग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। प्रभु वो जब हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे तो वो होगा तब। तो दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं। एक क्रिश्चियन होता है जिनको प्रभु ने बचा लिया है, वो शारीरिक क्रिश्चियन, वो कार्नल क्रिश्चियन है। एक क्रिश्चियन होते हैं जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन हैं, जिनका ना प्रभु सिर्फ उद्धार करता है लेकिन वो उनका प्रभु भी है। दैट इज रॉन्ग। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं पाया जाता है। या तो आपका यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता और प्रभु दोनों हैं, या तो यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता और प्रभु दोनों नहीं है। आप यीशु मसीह को आधा अधूरा नहीं ले सकते हैं। आप यीशु मसीह खाली एक हाथ एक साइड नहीं ले सकते हैं। आपको पूरा पूरा प्रभु लेना पड़ेगा। तो ही इज योर सेवियर, वो आपको बचाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ वो आपका प्रभु भी है। इसलिए वो आपसे अपेक्षा करता है मेरी आज्ञा का पालन करो। ही इज योर लॉर्ड, वो तुम्हारा मालिक है, वो हमारा मालिक है। आप में से हम लोग जितने लोग हैं, सुबह उठते हैं तो कितनी बार कहते हैं आह मेरे ऊपर कोई मालिक है? डू यू एवर थिंक लाइक दिस? कभी आप सोचते हैं ऐसे? जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, ईमानदारी से बताइए, अगेन बी वेरी केयरफुल, सावधान रहेगा, खाली नाम से मत बोलेगा। आप सच में ये जानते हैं कि यीशु मसीह आपका मालिक है, आपका प्रभु है, आपका स्वामी है, उसकी लॉर्डशिप, उसकी प्रभुता आपके जीवन में है? मतलब क्या हुआ उसका? जो वो कहेगा वो हम करेंगे। दैट्स ऑल इट मीन। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। वो हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं। तो जो हमसे कहेगा, तो हमसे जो कीमत चुकाने के लिए कहेगा, जो त्याग करने कहेगा, क्रूस उठाने के लिए कहेगा, हमको अपना जान भी देना, तो सच में हम फिर हंस हंस करके खून का हर कतरा बहा देंगे। जी सी दैट? आई होप यू कैन सी दिस। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्स 46 में उन्होंने कहा, खाली शब्द नहीं चाहिए, खोखले शब्द नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो तो तुम मेरी प्रभुता को, मेरे लॉर्डशिप को तुम तिरस्कारते हो। बिना आज्ञाकारिता के प्रभुता नहीं है। फिर दिन 47 पद से लेकर 48 पद में यीशु मसीह हमको उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में एक घर के माध्यम से। और बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आज्ञाकारिता हमको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाती है, अनंत सुरक्षा की ओर लेकर आती है। ओबीडियंस लीड्स अस टू इटर्नल सिक्योरिटी, वर्सेस 47-46। सो नोटिस करिए वर्स 47 है, तो जो कोई, एनीबॉडी, हूएवर, कोई भी, धर्म से मतलब नहीं, जाति से मतलब नहीं, रंग से मतलब नहीं है, मेल एंड फीमेल से मतलब नहीं है, हिंदुस्तानी अमेरिकी से मतलब नहीं है, जो कोई मेरे पास आता है, यू मस्ट कम। तो प्रोसेस देखिए, आप प्रक्रिया देखिए, प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के पास आकर के प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, देयर इज कॉम्प्रिहेंशन, देयर इज अंडरस्टैंडिंग, समझ है, वचन को सुन रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, समझ क्या हो क्या रहे हैं। सुनने के बाद उनको मानता है, मतलब मीनिंग, उसके अनुसार करता है, जीवन वैसे जीता है, लागूकरण करता है। सो मंडे टू संडे उसका जीवन अब फर्क है, मंडे टू संडे। वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा भैया क्या बताएं अब, प्लीज भैया प्लीज अंडरस्टैंड, क्या बताएं, प्रेशर बहुत है घर का, क्या बताएं, ऑफिस में अब रह काम करना है तो भैया करना पड़ेगा, क्या बताएं, पड़ोसियों के सामने अब क्या बताएं, भैया समाज में तो रहना ही ना हमको, भैया बात पेट की होगी ना, पेट की, अब नौकरी करना है, इस तरह की बातें, इस तरह के बहाने वो व्यक्ति नहीं देगा, जो आया है, सुना है और कर रहा है। तो ये नहीं कहेगा प्रभु जी ऐसा है, 10 साल की छुट्टी दे दी, मोहलत दे दी 10 साल की छुट्टी, फिर मैं आऊँगा आपका काम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा क्या, उदाहरण दिए यीशु मसीह, एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, आई मीन एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ये यहाँ पे बाइबल में दिया गया, नए नियम में, एक आदमी है उसके पिताजी मर गए और वो कहता है प्रभु जी मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम, थोड़ी मोहलत दी, थोड़ा थोड़ा, बस बस डिग्री ले लूँ, बस डिग्री सिक्योर कर लूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँ, बस बैंक में खाली 5 करोड़ रुपए हो जाएं, बस देन आफ्टर प्रभु जी फिर तो जीवन मेरा आपके लिए है ही, रिटायरमेंट तो मेरा है ही आपके लिए प्रभु जी, उससे पहले थोड़ा बहुत जो भी करना है कर लेने दीजिए। वो जो आया व्यक्ति यीशु मसीह के पास बोल करके मेरे पिताजी मर गए, मैं जा करके उनको दफनाना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा, आई मीन क्या यीशु मसीह इनसेंसिटिव हैं, क्या असंवेदनशील हैं, चिंता नहीं करते, प्यार नहीं करते लोगों से? यीशु मसीह को मालूम है कि लोगों के पास बहाने 1001 हैं सच्चाई से उसके पीछे ना चलने के। तो यीशु मसीह कह रहा है बहाने मत बताओ, कीमत चुकाओ, तुमको जो त्याग करना त्याग करो, मैंने कभी नहीं कहा था मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारा जीवन बढ़िया रहेगा, आराम से रहेगा, मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुमको तिरस्कारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा ठट्ठा उड़ाएंगे, तुम्हारे जीवन में समस्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानी आएंगी, विरोध होगा, विद्रोह होगा, असफलताएं तुम्हारे सामने पड़ेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए जियो, क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो और उस आज्ञा पालन में विशेष तौर से लूका के अनुसार लोगों से प्रेम कर रहे हो, लोगों को क्षमा कर रहे हो, पुरानी बातें भूल जाते हो, संबंधों को मजबूत करने के लिए जो हो सके तुमसे उसको करने की कोशिश करते हो, बुरा नहीं मानते हो, नॉट इजिली ऑफेंडेड, डू नॉट टेक ऑफेंस छोटी 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 बातों में, लेकिन मोटी खाल है, गेंडे जैसी खाल है, सह लेते हो, अनदेखा कर देते हो। आई मीन थिंक अबाउट, हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं परिवारों में, पति पत्नियों के साथ, भाइयों के साथ, कलीसिया में, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग भाग भाग करके जा रहे हैं व्यभिचार करने के संसार में, ये नहीं, कोई बड़ा कांड नहीं हो रहा, बड़े स्कैंडल स्कैम्स नहीं हो रहे हैं, द इश्यू इज एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, सस्पिशन एक दूसरे के प्रति, इतना शक। पुरानी बात 6 महीने पहले कुछ बोला था, उस बात को निकालने नहीं पा रहे। तो प्रभु बोध जब होता तो कैसे शामिल होते प्रभु बोध में भाई, कैसे शामिल होते हो? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यीशु मसीह यहां पे कह रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे देखो भाई, वो जो व्यक्ति है वर्स 47 में मेरे पास आता है, मेरी बात को सुनता है, मैं मानता है, बताओ मैं किसके समान है? वर्स 48 में वो आदमी के समान है, वर्स 48 में किसके समान है जिसने क्या क्या घर बनाने की क्या क्या गहरा गड्ढा खोदा। अब प्रोसेस एक प्रक्रिया है, घर बनाना है किस लिए? रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, आराम के लिए। ये चित्रण है, ये छोटा सा असाइनमेंट नहीं, छोटा सा काम नहीं, एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पीछे बहुत सोचा गया होगा, समझा गया होगा, ध्यान दिया गया, प्लानिंग की जाती है, योजना की जाती है। यू नो यू डोंट जस्ट घर बनाने के लिए ऐसे नहीं सुबह उठते घर बनाएंगे आज हम, ऐसा तो नहीं करते ना। आप सोच समझ करके कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। जो कुछ भी आपसे बन सकता है उसको आप जमा करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ले करके आते हैं। अभी यहाँ पर ये गहरा खोद रहा है, उस समय JCB नहीं थी, 3,000 रुपये घंटा दे खुदवा दिया नींव। यहाँ मेहनत कर रहा है आदमी, स्वयं कर रहा है, स्वयं मेहनत कर रहा है, पसीना निकल रहा है, धूप में खड़ा है, बरसात में खड़ा है, एंड खोद रहा है। एंड खोदने के बाद चट्टान पे नींव डाला, मीनिंग ऊपर की जो ढीली मिट्टी है उसको खोद के निकाल दिया। उतना खोदा जब जहाँ पे नीचे पक्की मिट्टी मिल गई जिस पे नींव बन सकती। जो लोग ने घर बनाया आप जानते कैसे होता है, सिंपल, ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है, सामान्य ज्ञान बुद्धि की बात है। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? नींव चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई नया विज्ञान की बात नहीं है, ये हजारों साल से लोग ऐसे घर बनाते हैं। पक्का घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है तो नींव खोदना पड़ेगा। नींव खोदने के लिए गहरा जाना पड़ेगा, जितनी छत ऊंची होगी उतना गहरा नीचे होगा, नीचे पक्की मिट्टी होगी तभी आप छत नींव डालेंगे, तभी उसके ऊपर दीवार खड़ी पाएगी, तभी तो छत पड़ेगी, अगर नहीं होगा सब भरभरा के गिर जाएगा, सीधी सीधी बात। सो व्हाट जीसस इज सेइंग, यीशु मसीह जो पैराबल हमने बताया, पैराबल जो दृष्टांत होते हैं, अक्सर सामान्य जीवन, पृथ्वी के जो जीवन है उसके उदाहरणों को उसको लिया जाता, वृत्तांत उनको, उनका डिटेल्स लिया जाता समझाने के लिए ईश्वरीय स्वर्गीय शिक्षा को, एक मुख्य बात को। तो लुक हाउ यू वर्क, तुम घर बनाने कैसे मेहनत करते हो, घर बनाने के लिए मेहनत करते हो, प्रभु के पीछे चलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नो शॉर्टकट्स। आप ये नहीं कहते हो नींव बनाना है, क्या बताएं पैसे कम है, क्या करें क्या करें, ऐसा तीन तीन ईंटा छोड़ छोड़ करके लगाएंगे हम नींव में। इमेजिन, इमेजिन व्हाट हैपेंस इन वर्स 48 में, इसने गहरा गड्ढा खोदा, चट्टान पे नींव डाली। सो बेसिकली जो उसको करना चाहिए था सही तरीके से, उचित रीति से उसने किया। तभी तो क्या हुआ, जब बाढ़ आई, बरसात नहीं, बरसात की तो बात ही नहीं हो रही, मानसून की तो बात नहीं, मानसून आई कोई दिक्कत नहीं, पानी बरसा कोई दिक्कत नहीं, हवा चली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आई और जल की धाराएं, डैम खुल गया, यहाँ पे बांध खुल गया, पानी आ रहा है, लेकिन हुआ कि व्हाट हैपन, ये जो मकान है जब इससे टकराया गया वर्स 48 में, तो वो हिला ना सकी। क्यों? क्योंकि वो मकान पक्का था। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने वो किया जो उसको करना चाहिए था, जो उसको बताया गया था उसके अनुसार उसने वास्तव में मेहनत किया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एक मसीही जीवन है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीता है। दो तरह के लोग, दो तरह के मकान, दो तरह के एंड रिजल्ट्स, गंतव्य। बस 48 के एंड में, क्योंकि ओबीडियंस है, क्योंकि आज्ञाकारिता है, इसलिए अनंत सुरक्षा है। जिसी दैट, जिसे हु आर वी किडिंग, किसको मूर्ख बना रहे हैं हम लोग? प्रभु को मूर्ख बनाएंगे क्या हम लोग? कैन वी फूल गॉड? क्या हम प्रभु को मूर्ख बना सकते हैं? जिएंगे अपने लिए, अपने अनुसार जिएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, 24 घंटे पैसा 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 पैसा, मतलब भी नहीं। फोन भी खुलेगा तो उसमें जितने भी ऐप होंगे सब पैसे से जुड़े होंगे, मतलब बात भी करेंगे तो पैसा 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 पैसा, लाइक जस्ट मनी मनी मनी। किस लिए? ताकि और बड़ा मकान हो जाए। किस लिए? ताकि हमारे पास और बैंक पैसा हो जाए। किस लिए? नथिंग टू डू विद द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ोतरी से कुछ लेना देना नहीं, लोगों की मदद करने के लिए नहीं है, अपना अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा। चार मकान हो जाएंगे तो मेरे चार बच्चे हैं, तो चार बाहर बच्चे के पास एक ही मकान होना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़ा बुढ़िया के पास एक घर होना चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए, तो पांच मकान तो होने ही चाहिए, और छुट्टी के लिए एक अलग घर होना चाहिए, पहाड़ों पर छुट्टी पर एक घर होना चाहिए, और कहाँ पर समुद्र के किनारे भी एक घर होना चाहिए, तो 6-7 घर तो होने चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। नहीं तो जीने का फ़ायदा क्या है भैया? भाई जीने का कोई फ़ायदा है अगर इतना पैसा ना हो तो? पैसा पैसा पैसा, यू तो अपना पूरा जीवन, जान, ताकत, उद्देश्य, मतलब सुबह शाम तक लगा दिए बटोरने में, बस बटोरो, बस। यू सी व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा जीवन जो त्याग का नहीं है, ऐसा जीवन जो प्रेम का नहीं है, ऐसा जीवन जो क्षमा का नहीं है, ऐसा जीवन जो दूसरे में निवेश नहीं कर रहे हैं, ऐसा जीवन जो क्रूस उठा के नहीं चल रहा है, ऐसा जीवन जो सुसमाचार के लिए अपने आप को व्यय नहीं कर रहा है, वो प्रभु जी के आगे कार्यता नहीं कर रहे। यही बात यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं वर्स 49 में, वर्स 49 में। तो ही स्टार्ट्स विद पॉजिटिव, 48 में, 47-48 में सकारात्मक से शुरू करते हैं।
क्योंकि जिसने आज्ञा मानी है, जिसने प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत किया है, उसका भविष्य सुरक्षित है। वर्स 49 में, लेकिन जिसने आज्ञा नहीं मानी, सेकंड पर्सन, जिसने आज्ञा नहीं मानी, मत्ती के अनुसार ये मूर्ख है। मत्ती के अनुसार पहला वाला आदमी बुद्धिमान है, बुद्धिमान प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, मूर्ख व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, सुनता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। ये घमंडी है, ये स्वयं पे भरोसा करता है, ये आलसी है, ये नए तरीके लेकर के आता है। कहता हम परंपरा, हम यीशु मसीह जो प्रभु जी कहते हैं उसे क्या था, 2000 साल पहले कहा था, अब तो 2024 चला, हमें उसे मतलब नहीं। ये आलसी है आत्मिक जीवन में। वर्स 49, उसने सुना तो अवश्य लेकिन उसके अनुसार नहीं चला, खाली बोलता है प्रभु प्रभु, कहता मैं प्रभु आपके लिए जीऊंगा, कभी पैसे नहीं निकलेंगे, कभी समय नहीं निकलेगा, कभी भावनाएं नहीं खर्च करेंगे। तीन चीजें बार बार बोलते हैं ना, थ्री वेज, आपका पैसा, आपका समय, आपकी भावनाएं, ये तीनों चीज खाली मैं मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोस, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा परिवार और मेरा खानदान और मेरे खून के रिश्तेदार, जो खून के जो रिश्तेदार हैं हमारे, बस दैट्स इट, खत्म। वर्स 49, सुना उसने लेकिन उसके अनुसार नहीं चला। किस आदमी के समान है? उसी आदमी के समान है। किस आदमी के समान है? जिसने बिना नींव डाले। क्यों नींव डाले हम? क्यों से? प्रभु जी ने कहा है वचन के अनुसार चलो, लेकिन देखिए भैया ऐसे समय बदल गया है, आपको समझ भी नहीं आता, आप तो एक बुलबुले में जीते हैं अपना, आप तो चर्च में काम करते, अपने बुलबुले में जी रहे हैं, आपको क्या मालूम दुनिया कैसे चलती है? नींव डालने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, खर्चा पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मेहनत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, बिना फाउंडेशन का मकान बनाएंगे हम। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। नई शिक्षा, नया ज्ञान, नया रास्ता, नया जीवन। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान है ना। हम क्यों प्रभु की बात सुने? देखिए भैया आप ये बताइए, देखिए ऐसा है, प्रभु जी पैसा देंगे हमको, पेट हमारा प्रभु जी भरेंगे। एंड आई हैव हर्ड क्रिश्चियन, मैंने सुना है मसीहों को ये कहते हुए, क्या मेरे बच्चों की देखभाल प्रभु जी करेंगे? हाय हम पर, जब हम ऐसे बोलते हैं, हाय हम पर। वास्तव में हमारी सुरक्षा किस में पाई जाती है? वास्तव में हमारा प्रावधान कहां से आता है? वास्तव में हमारे जीवन में उपलब्ध कौन हमारे लिए कराता है? वर्स 49 में, ये जो व्यक्ति है उस मनुष्य समान है जिसने बिना नींव डाले भूमि पर ही मकान बनाया, बना दिया उसने, चलो चलो लगा दो, खत्म, अरे जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, ये झट मंगनी पट ब्याह करना चाहता है, ये सोचता नहीं है, ये अपने अपनी बुद्धि चलाता है, ये सलाह नहीं लेता है, ये प्रभु के लोगों को तिरस्कारता है, ये सोचता है कि मैं जो हूँ वो हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे मालूम क्या करना चाहिए, मेरे निर्णय मेरे अनुसार, मैं क्यों किसी से सलाह लूँ? क्या ये जो कवनेंट कम्युनिटी, ये क्या है? ये वाचा का समुदाय, ये प्रभु के लोगों से क्या मतलब, कलीसिया से क्या मतलब मुझे, सुसमाचार से क्या मतलब मुझे? अपना देखो भैया, देखो सब दिन के अंदर अपना संभालो, अपनी खाल बचाओ, अपनी पीठ बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने को ठीक रखोगे तो सब ठीक रहेगा। मैं और मैं और मैं ठीक हूं, मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं ठीक हूं, बस। दिस इज द मैन, ये क्या कर रहा है? बिना नींव के मकान बना रहा है। एंड यू नो व्हाट हैपन, वर्स 49 में क्या हुआ? जल की धाराएं टकराई, बाढ़ भी नहीं आई है यहां पर, हल्की सी बरसात हुई है, शायद थोड़ा सा पानी जमा हो गया, नाली से उभर करके आया, और ये घर क्या हुआ? नोटिस द लैंग्वेज, जानबूझ के इंटेंशनली जो राइटर हैं इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है, इसकी क्या बताएं, हास्यपद भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। जल की धाराएं टकराई, वो तुरंत गिर गया, रुका भी नहीं। ये कार्ड्स, ये ताश के पत्तों का बना हुआ मकान है, ये ताश के पत्तों का बना हुआ मकान है। ये उस मकान के सामने जो वो भेड़िए वाले, उन्होंने कहने से भेड़िया और वो जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं सुअर के बच्चे, उनका घर बनाते हैं, वो फूकता है, एंड हाफ एंड पाफ, वो क्या कहते हैं, घर कहते हैं, गिर जाता है, फूकने से गिर जाता है। दैट्स द काइंड ऑफ हाउस, ये घर तुरंत गिर पड़ा। बनाया क्यों था इसने ये अलग घर, हमको बताइए, बनाया क्यों था इसने ये अलग घर? प्रभु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया था? प्रभु के वचन के अनुसार क्यों नहीं जी रहा था? क्योंकि वो सोचा था अगर वो अपने अनुसार जिएगा तो उसका जीवन बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सब ठीक रहेगा, फलवंत रहेगा, वो प्रॉस्पर करेगा, समृद्धि उसकी होगी। लेकिन हुआ उल्टा। एवरी टाइम, हर बार जब हम प्रभु के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी बार हम विनाश की ओर जाते हैं, उतनी बार गारंटीड डिस्ट्रक्शन। डिसोबीडियंस लीड्स टू टोटल डिस्ट्रक्शन, अनाज्ञाकारिकता संपूर्ण विनाश की ओर लेकर जाती है। नोटिस करिए यहां पे वर्स 49 के एंड में क्या लिखा है, पूर्णता नष्ट हो गया वाला घर, सारी जीवन की कमाई, सब कुछ जो कि सोचा था सब बढ़िया होगा, क्या होगा, सब बर्बाद हो गया, सब लुट गया। डू यू सी दैट? सो द क्वेश्चन इज, यीशु मसीह यहां पे क्यों दे रहे हैं वाला उदाहरण, क्यों ये दृष्टांत दे रहे हैं? बेसिकली जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सीधा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके देखने की आंखें हो वो देख ले। डू यू नो प्रभु जी क्या कह रहे हैं यहां पे? अगर आप वचन के अनुसार नहीं, अगर आप अपने जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे तो अंततः आपके हाथ में क्या लगेगी? आपके हाथ में निराशा लगेगी, आपके हाथ में क्या लगेगा, विनाश लगेगा। परंतु प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो अंततः क्या होगा? हमारा हाथ में सुरक्षा होगी, अनंत काल की सुरक्षा होगी, आज की नहीं, कल की नहीं, हमेशा की सुरक्षा। लेकिन प्रश्न आपसे यह है, डू यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करते हैं? एंड प्रश्न यह है, अगर आप विश्वास करते हैं तो क्या आपके जीवन में दिखाई देता है कि आप इस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं? क्या दिखाई देता है इस तरह के निर्णय आप ले रहे हैं? आई मीन वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद हफ्ते बाद हफ्ते आप वचन को सुनते हैं, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन इंच भर का बदलाव नहीं। वो जो नीडल है ना, वो जो सुई है, सुई में कुछ फर्क नहीं हो रहा है। खड़ा कर दिया आदमी को वजन तोड़ने को, जो 70 पे था वो तो 70 से 71 71.5 जा नहीं रहा है। वो डजंट मूव, जहां पे वही है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग? यहां पे जो वचन है वो हमको आपको बड़ी गंभीरता से चेतावनी दे रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, सत्य वचन के मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप इसके अनुसार जीवन जी सकते हैं? वर्स 46 में जो कहता है, जब तुम, जो मैं कहता हूँ, जब तुम उसे नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं? क्या प्रभु आपसे ये कहेगा? अगर आज आपकी आंखें बंद हो जाएं, इस समय आप प्रभु के सामने खड़े हों, तो क्या प्रभु जी आपसे कहेंगे तुमने अपने जीवन में खाली हे प्रभु कहा, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना? आई मीन ईमानदारी से अपने जीवन को जांचिए, आप ईमानदारी से अपने जीवन को जांचिए। समस्या ये है कि अगर हमारी आपकी आंखें बंद हो जाएं, तो हम में से सब कम पाए जाएंगे, हम में से सब विफल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, ये जो प्रभु है जो हमसे कह रहा है कि तुम खाली बोलो नहीं लेकिन करो, उसने हमारे लिए, हमारे बदले, हमारी जगह पर, हमारे वास्ते सब कर दिया। यहाँ पे अनुग्रह है हमारे लिए, यहाँ पे आशा है हमारे लिए, यहाँ पे निराशा नहीं, अंधकार नहीं। तो ये संदेश सुनने के बाद आप घर पे जाकर के अपने आप को चाबुक से नहीं मारेंगे। आप इस संदेश को सुनने के बाद आप जाएंगे, अरे बर्बाद हो गए, लुट गए, हमारे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ आशा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, आप चाहते हुए भी प्रभु के पीछे नहीं चल पाते जिस तरह से आपको चलना चाहिए, वो मैं जानता हूं ना। हम समर्पण की बात करते, त्याग की बात करते, क्रूस उठाने की बात करते, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है, इसीलिए हमको ये सब्बत के प्रभु की आवश्यकता है, जिसने हमारे लिए, हमारे बदले में, हमारे वास्ते वो धार्मिकता का जीवन जिया है, सिद्ध धार्मिकता का। उसने वो सारी जो मांगे थी, जो हम नहीं पूरा कर सकते थे, जिसमें हम और आप असफल रहे थे, उसने हमारे बदले कर दिया, और हमें दंड से बचाने के लिए, पूर्णता विनाश से बचाने के लिए स्वयं विनाश को सह लिया क्रूस के ऊपर। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग में उठा लिया गया, एक दिन वो वापस आएगा जीवते मरहों का न्याय करने के लिए। जब वो चला गया, उसने हमको निराश नहीं छोड़ दिया, अकेले नहीं छोड़ दिया, उसने अपना पवित्र आत्मा दिया, उसने अपना सहायक भेजा। त्रिएकता का जो तृतीय जन है, द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, पवित्र आत्मा, वो अब हमारे भीतर वास करता है। द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे भीतर है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं। जब हम उसके वचन से और भी अधिक प्रेरित होते हैं, उसके वचन को और भी अधिक हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है पवित्रता का जीवन जीने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। उसकी सहायता से हम एक दूसरे से प्रेम करने पाएंगे, अपने शत्रुओं से प्रेम करने पाएंगे, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पाएंगे, अपने बहनों से प्रेम करने पाएंगे, अपने भाइयों से प्रेम करने पाएंगे, अपने पति से प्रेम करने पाएंगे, अपने बच्चों से प्रेम करने पाएंगे। उसकी सहायता से हम पुरानी बातों को भूलने पाएंगे, माफ करने पाएंगे। उसकी सहायता से हम अंतर जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, अंतर व्यक्तिगत संबंध हैं, उनमें हम दृढ़ होने पाएंगे, हमारे विवाह मजबूत होंगे उसके वजह से, उसकी वजह से परिवार मजबूत होंगे, उसकी वजह से कलीसिया दृढ़ होगी, उसकी वजह से कलीसिया में प्रेम होगा जो हम नहीं कर पाए, यीशु मसीह की वजह से, उसके पवित्र आत्मा की वजह से पूरा होगा। हमको आपको क्या करना है, उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है, पापों से पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, उसकी और सामर्थ की मांग करनी है और उस पर निर्भर होते हुए आगे बढ़ना है, स्वयं की ताकत पर नहीं लेकिन पवित्र आत्मा पर निर्भर होते प्रतिदिन। और फिर जब एक दिन हमारी आंखें बंद होंगी, जब हम उसके सामने खड़े होंगे, तो ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन वो कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य और उत्तम पुत्र। इस आशा के साथ हम लोग प्रभु के सामने आ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।